आप हमसे बात कर रहे थे, हमें बता रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। जिस दरमियान हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें मजहबी स्कॉलर गामिदी साहब ने भी ज्वाइन किया है, कुछ इसी सिलसिले पर उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। गामिदी साहब, कैसे देखते हैं आप इस सबको, हेड ऑफ स्टेट और इस तरह की बातें और ये तमाम तर सूरत हाल, आईन, कानून और अखलाकियात क्या कहती है?
सब कुछ इंतहाई अफसोसनाक है। कोई सलीमत सदा आदमी इस सूरत हाल में शायद आराम की नींद भी न सो सके। पूरे मुल्क को ये मालूम होता है कि यरगमाल बना दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा खून जिस चीज का हुआ है वो अखलाक है। अखलाके आलिया यही किसी कौम के इर्तका और उसकी बुलंदी का बायस बनते हैं। लेकिन जब उसके लीडर, उसके रहनुमा इस पस्ती में उतर आए, ना उनकी जुबान में अखलाकी उसूलों का कोई लिहाज हो, ना उनके आमाल में अखलाकी उसूलों का कोई लिहाज, तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जब किसी कौम में आप ये देखें कि कोई ऐसी बात बाकी नहीं रह गई जिसको मुसलमा तौर पर हम सब मानते हों, बल्कि हर शख्स अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो फिर उसका खुदा ही हाफिज है। हम में से हर शख्स को इस मौके पर दुआ करनी चाहिए कि हमारे लीडरों और रहनुमाओं को अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक अता फरमाए, वो इस कौम के मसले को समझें, अपनी जिद और अनानियत को छोड़ें और वही रवैया इख्तियार करें जो रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर इख्तियार किया था। आप एक लश्कर लेकर मक्का गए थे, लेकिन जब आपने देखा कि इंसानों का खून बहेगा और बहुत से वो लोग जो मक्के में ईमान ला चुके हैं वो भी इसमें रोंदे जाएंगे, तो आपने उन शरायत पर सुलह की और वापस आ गए जिनको सहाबा किराम ने अपनी शिकस्त समझा। लेकिन यही चीज आपके लिए आखिरी फतह बन गई और खुदा ने ऐलान कर दिया कि हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमा दी है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आला इंसानी अखलाकियात को हर चीज पर तरजीह दी गई और इंसानी जान को हर चीज से मुकद्दम समझा।
मैं अब इसी गुफ्तगू में बिलाल कुतुब साहब आपको भी शरीक करना चाहूंगी। गामिदी साहब की बात आपने सुन ली, ये बताइएगा सुलह अहम है, हेड ऑफ स्टेट के लिए भी अहम है, लेकिन पहल कौन करे ये भी तो सवाल है अब।
ये मेरे मेरे ख्याल में उस्ताद मोहतरम गांधी साहब ने जो बात है ना, उसको समंदर को कूजे में बिल्कुल समो दिया कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो विक्टम बना है, जो सबसे बड़ा खून बहा है और सबसे ज़्यादा बदबूदार चीज़ नज़र आती है वो लोगों के किरदार हैं। कोई भी शख्स जो है वो इतना बाकिरदार नज़र नहीं आया पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्ते के अंदर कि जिसके साए के अंदर लोग जो है वो ठंडक महसूस करते या उसको अपना कायद कह सकते। कायद ढूंढना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो किरदार भी नज़र नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें कहता चला जाऊँ। एक तो मेरी ज़ाती राय के अंदर फैसला है कि अगर किसी को ये शक और शुबा है कि ये खतरनाक वक्त जो है ये पाकिस्तान को नाउज बिल्ला किसी तरह ले डूबेगा, तो वो अपनी गलत फहमी को बिल्कुल दूर कर ले। क्योंकि हज़रत मूसा अलैह सलाम जो हैं, उन्होंने जब हज़रत खिज़र के साथ जो बड़ा लंबा वाक़िया है, हज़रत खिज़र ने जो दीवार टूटी हुई थी उसको जब रीबिल्ड करना शुरू किया तो हज़रत मूसा अलैह सलाम ने उसके ऊपर सवाल उठाए, तो जब खुदा ने इसका जवाब दिया और हज़रत खिज़र अलैह सलाम ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी तो कहा, मूसा ये दीवार उन 2 बच्चों की है जिनका बाप जो है वो बहुत शरीफ और अच्छा आदमी है। ये जो ममलकत रियासत पाकिस्तान है इसका बाप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये क्योंकि बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी भी इस दीवार को किसी खिजर के हवाले जरूर करेगा इंशाल्लाह ताला। जहां तक मामला रह गया रियासत की बादशाहत का, हजूर मैं तो आपसे बड़े हाथ बांध के अर्ज करता हूं कि रमजान सारा गुजरा उलमाए कराम से डरते हुए कि ये जुमला इधर ना गुजर जाए, ये जुमला इधर ना गुजर जाए, और सारा रमजान में माफिया मांगता रहा लोगों से। अब उलमा के साथ हमने सियासतदानों को भी शामिल कर लिया, अब ये खौफ आ रहा है कि कहीं इसकी तरफ की बात ना हो जाए, कहीं उसकी तरफ की बात ना हो जाए। हमने तो पिछले 10 साल में सिर्फ यह सीखा था कि वो शख्स दहशतगर्द है जो अपनी बात को बगैर दलील के लोगों से मनवाना चाहता है, और हमें यह बताया गया कि ये लोग जो हैं ना ये दीन के ना दुनिया के, ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी हैं। अब अगर यही तारीफ थी तो फिर यही दहशतगर्द आज आपको दाढ़ी के साथ या दाढ़ी के बगैर हर जगह नजर आ रहे हैं। क़यादत भी इनके पास है और किरदार भी इन्हीं का नजर आ रहा है।
अच्छा, किरदार की आपने बात की, कुछ गुफ्तार का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अगर तकरीर हो या फिर सोशल वेबसाइट्स हो, गुफ्तार कहीं नजर नहीं आती, लोग अजीब अजीब अलकाबात एक दूसरे को देते हैं।
मैं बड़े अदब से छोटी सी इजाजत चाहूंगा आप पे ये जुमला कहने के लिए, ये आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन ये मामला सिर्फ ये पिछले 14 दिन का नहीं है। आप देखिए कि कोई भी शख्स जो है वो जब बात कर रहा होता है, चाहे खबरों की बात ले लीजिए, खबर आती है कि जनाब एक अदालत में से एक मुजरिम जो है वो 25 कत्ल उसने किए हुए थे, 3 उसने रेप किए हुए थे और वो पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। अब गौर कीजिए कि कामयाबी का लफ्ज जो है हम किस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर उसने तमाम कानून जो है उनको जब नेसो नबूद करके रख दिया, हम लफ्ज उसके साथ जोड़ते हैं कामयाबी का। यहां भी मेरे ख्याल में लफाज की कमी की वजह जो है वो सिर्फ ये है कि हमारे अंदर इल्म और शौक और तहकीक का जो पैमाना था वो शायद बहुत अरसे से खाली पड़ा है। इसको भरने के लिए हमें कायदीन भी चाहिए, हमें उलमा भी चाहिए। और यहां पे मैं खास तौर पे अदब से गांधी साहब से भी पूछूंगा कि यहां पे हमारे यहां इस वक्त हर वक्त कोई दिन, कोई लम्हा, कोई मौजू, कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं होती जिसमें उलमाए किराम अपना रंग और रोल नहीं अदा कर रहे होते। आज इस जमाने में जबकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है मिंबर से आवाज बुलंद करने की, हमारे उलमाए किराम जो हैं वो इतने खामोश और इतने पस्त किरदार सियासतदानों के पीछे छुप के क्यों बैठे हुए हैं।
बिलाल कुतुब साहब, आपकी बात हमने सुनी, गांधी साहब
को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए और बड़ी सफाई और सच्चाई के साथ सच्ची बात कहनी चाहिए। देखिए कुछ चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं, अगर कोई लीडर, कोई रहनुमा बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है या आईन और कानून को चैलेंज करने की कोशिश करता है या कवायद और जवाबित की पाबंदी नहीं करता है या जो कुछ भी हमने इस वक्त आईन बना रखा है उसके अंदर रहकर बात नहीं करता, तो हम में से किसी शख्स को उसे कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, हाँ वो हुकूमत में हो, हाँ वो अपोजिशन में हो। ये वो मुसलमात है, अखलाकी मुसलमात है। आईन कोई मामूली चीज नहीं है, ये कौमी निसाब है और हमें पाबंद किया गया है कि हम
गांधी साहब सवाल तो ये भी है ना, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया
गांधी
साहब, अब बात आपकी कट रही है,
मुझे इजाजत दीजिए, मैं गांधी साहब से एक सवाल मैं करना चाहूंगा। एक
साने है मॉडल टाउन की, किसी ना किसी पर तो इसकी जिम्मेदारी भी आयद होती है।
ये सवाल आपने मुझसे पूछा है तो मैं यस करता
हूं। गांधी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक जुमला आपको
बर्तरी को मानने के लिए तैयार नहीं है, कानून के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं।
हजरत
हमारे जो पहले लीडर थे वो कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो कोई जुलूस निकाले और उनके कारकुन टोल टैक्स न दे, वो ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि दफा 144 नाफिज हो और वो एक हुजूम की सूरत में आगे बढ़े, वो चार चार की टोलियों में
अपना एहतजाज किया करते। गांधी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं और ये सवाल मेरे दिल में, दिमाग में बड़े अरसे से, मैं सबकी इजाजत से सवाल करना चाह रहा हूं। हजरत एक तो मुझे ये मिसाल दे दीजिए कि क्या वो जो लीडर है वो टैक्स देगा, वो किसी सूरत में अकाउंटेबल भी होगा और वो कभी भी सिविल डिसोबीडियंस का कानून नहीं तोड़, वो बात बिल्कुल सच है आपकी, लेकिन यहां तो मामला मुझे लगता है इससे भी ज्यादा इस तरह गिर चुका है कि हमने, मुझे कोई मिसाल देके ये बात समझा दी, मेरे दिल को ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो इस बात पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, तायबीन ने, कभी भी किसी ने भी औरतों और बच्चों को शील्ड बना के इस्तेमाल किया हो अपनी हिफाजत के लिए। मुझे कोई ऐसी गजवा की, कोई ऐसी जंग की मिसाल दे दीजिए, कोई मुझे ऐसी भी मिसाल दे दीजिए कि लोग जो हैं उन्होंने कब्रों का और कफनों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि कफनों के ऊपर नारे लिख के आप बैठे हुए हैं, कहाँ क्या क्या ये तजलील जो है इसको शरई नज़र से हम नहीं देखेंगे कभी भी।
मैं आपसे अर्ज करूँ कि आपने रसूलुल्लाह सल्लम और सहाबा का जिक्र किया, मैं तो जिक्र या उसका इशारा भी सच्ची बात है कि इस सूरत हाल के लिहाज से उनकी हालत समझता हूँ, उन्होंने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था। आपको मालूम है कि बदर का मार्का हुआ, उहद का मार्का हुआ, किस तरह ख्वातीन की पहले हिफाजत का बंदोबस्त किया गया, यानी एक कले में उनको रखा गया, ये तरीका होता था। ये तो बुलदिल लोग हैं, सच्ची बात यह है कि अखलाकी पस्ती की कोई हद नहीं है जो बाकी रह गई हो, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसमें लोगों के जज्बात को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है और जिस तरह से कानून और अखलाक हर चीज बिल्कुल ये समझिए कि पसे पुश डाल दी गई है, अंबिया और सहाबा तो बड़ी चीज है, हमारे सालहीन ने कभी अपनी जिद्दोजहद में इस तरह की कोई मिसाल अपने पीछे नहीं छोड़ी है। सैयद अहमद शहीद की तहरीक अभी चंद सौ साल की बात है, इससे पहले बहुत सी तहरीकें उठी हैं, यहाँ जमात इस्लामी की तहरीक है, मौलाना सैयद अमरुल्लाह मौदूदी साहब की क़यादत में रही है, आप अंदाजा कीजिए कि वो किस आला अखलाक पर खड़े होकर ये सब काम करते थे। एहतजाज करना, अपनी बात कहना ये कोई बुरी चीज नहीं है,
लेकिन अखलाकी लिहाज से हम इस वक्त जिस पस्ती में उतर चुके हैं, इस पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि
राजिऊन। बड़ी खूबसूरत बात की हजरत। एक सवाल मैं और पूछूंगा, सबकी इजाजत है, बड़ी माफी के साथ। हजरत आपका, आपकी क्योंकि बड़ी नज़र है इस बात पे, और आपकी नज़र खास तौर पे जो है वो नौजवानों के ऊपर और पाकिस्तान के नौजवानों, मुसलमानों के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रही है हमेशा से, और मैं इस बात को बड़ी ही कदर की नज़र से देखता हूँ कि आप तरबियत जो है वो मेरी उम्र के बच्चों को नहीं, वो आप उन बच्चों को देना चाहते हैं जो कि वाकई इस वक्त इस तरबियत के मुस्तहिक हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बहसियत उस्तादसा, हम बहसियत उल्मा, हम बुरी तरह नाकाम हुए अपने बच्चों की तरबियत में, कि हमारे बच्चे जो हैं वो शायद स्किन डीप सोचने की सलाहियत और सवाल उठाने की जो जरूरत है वो कहीं खो बैठे हैं?
यकीनन हम इसमें नाकाम हुए। असल में ये हमारी नाकामी है जिसका जहूर इस वक्त सोशल मीडिया पर होता है, ये हमारी नाकामी है जिसका जहूर हमारी मजलिसों में होता है, ये हमारी नाकामी है जिसका जहूर हमारे सामने रोजाना टेलीविजन पर हमारे रहनुमाओं की तकरीरों की सूरत में हो रहा है। ये तो मालूम होता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमने कोताही की है। मेरा तो ख्याल है कि ये इंकलाब और फला और फला, इनको छोड़कर हम में से हर शख्स को अपनी कौम की तरबियत में लग जाना चाहिए, इसलिए कि जब कौम इस पस्ती में गिर जाए और उसके लीडर इस मुकाम पर उतर जाए तो फिर उसको बचाना आसान नहीं होता। मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ अपनी कौम से, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी।
वाह वाह, बहुत खुश मैं अदब से, मैंने कहा था पिछला सवाल, लेकिन एक सवाल सिर्फ और करना चाहूंगा। एक सवाल की मुझे इजाजत दीजिए हजरत, क्योंकि गांधी साहब आप इस वक्त लाइन पर हैं, मैं आपसे दस बदस्त अर्ज करना चाहता हूं कि फलस्तीन जो है वो सारा रमजान, यकीन कीजिए मेरे आंसू नहीं थमते थे कि फलस्तीन में बच्चों के लिए कफन नहीं है और हम अपने लिए ईद के जोड़े खरीद रहे हैं। यहाँ पे आप अगर सीरिया को देखिए, इजिप्ट को देखिए, बहरीन की तहरीकों को देखिए, ये जो अरब स्प्रिंग हम कह रहे हैं और इस वक्त जो हालात हैं, और उम्मत-ए-मा जो है वो मजमुई तौर पर इस वक्त मुझे लगता है सुमन बुकमन बिल्कुल कान मुंह बंद करके बैठी है। आप इस बात को जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, आप इस बात को इससे रिलेट कर सकते हैं क्या?
मेरा एहसास है कि ये एक मजबूरी इन्हिसास है जिसका जहूर यहाँ भी हो रहा है। हम फलस्तीन को भी इन दिनों भूल चुके हैं, हम उन लोगों को भी भूल चुके हैं कि जो हमारे अपने मुल्क में बेघर हो गए हैं और लाखों की तादाद में है। हमें इनमें से कोई भी याद नहीं है, हमें अपना इकतदार सामने नजर आता है, अपनी कामयाबियां सामने नजर आती हैं, अपनी जिद और हठधर्मी के हमी के हम असीर होकर रह गए हैं। ये तो इतना बड़ा आलमनाक बाग है हमारी तारीख का कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम याद किया करेंगे कि एक पस्ती का वो जमाना भी हमने देखा था जब हमारे लीडर हमारे सामने दंदना रहे थे और उनको ना अखलाक का पता था, ना उनके किरदार और सीरत में कोई रोशनी थी, और ना उन्हें उम्मत मुस्लिमा याद थी, ना उन्हें फलस्तीन याद था, ना उन्हें वो लोग याद थे कि जो उनके साथ।
ऐसी सूरत हाल आप आज की देखते हैं। गामिदी साहब बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगु का आप हिस्सा बने, इतना आपकी इल्मियत से भरपूर गुफ्तगु और आपके विजन हमने जाने इस सिलसिले में, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।